ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे यथा अश्नता, जो भोजन करने वाला व्यक्ति है, भोजन कर रहा है, तो भोजन करते समय ही सुतुष्टि, तुष्टि सु अर्थात तो उसकी तुष्टि हो जाती है। तुष्टि माने क्या? जब खाएंगे ना तो खाने के साथ ही मैं खा रहा हूं अच्छा लगेगा,
संतोष,
संतोष होगा। और पुष्टि, शरीर में पुष्टि आने लगेगी। और खुद खुदपायो, खुदपायो माने तो खुद, खुद माने खुदा, ऐसी हो जाए और कोई चीज खाने की इच्छा नहीं करे। प्रतिग्रास में ही खाने वाले व्यक्ति एक एक ग्रास खाएगा, उसी के परिमाण में उसको तुष्टि, पुष्टि और खुदा निवृत्ति, तीन चीजें अपने आप हो। उसी प्रकार से जो भक्ति करेगा अपने आप आत्मा में आनंद होगा। बतलाया ना, सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रधव खजे अहे तुक्य व्यवहिता जा भक्ति नहीं जात्मा संप्रसिद्ध। आत्मा प्रसन्न हो जाती है, संसार में वैराग्य अपने आप उसको हो जाएगा। कोई विषय को लेने की, ग्रहण करने की लालसा नहीं। शरीर के जीवन के निर्वाह के लिए होगी कुछ जरूरत, तो वो भी क्या करेगा, कोस कोस करके। कोस कोस माने क्या? है मैं क्यों ले रहा हूं, क्यों ऐसा करता हुआ लेगा। ग्रहण मुखे भोग इस प्रकार से करेगा, सुख से नहीं, अपने में है क्यों ले रहा हूं, इस तरह से करता हुआ वो करेगा। विशेष करके देखो, साधन भक्ति करते समय एक आदमी भगवान की लीला कथाओं को पढ़ रहा है, कोई लीला कथा पढ़ने पर उसको समझते ही, अर्थ बोध होते ही बड़ा आनंद होता है। कोई भी श्लोक ले लो, प्रणत देहिनांग है, तब कथामृतम है, कोई भी श्लोक, अथवा आंखों की सार्थकता यही है, अक्षताम फलमिदम न परम विदा। आंखों की सार्थकता है, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, सखा लोग जा रहे हैं, सखा लोग बजा रहे हैं, कोई बंसी और कोई सिंगा, कोई कुछ बजा रहे हैं, कोई गायों को घेर रहे हैं, कोई दिलग्गी हंसी करते हुए चले जा रहे हैं, और बलदेव जी आगे चल रहे हैं, कृष्ण पीछे चल रहे हैं, कृष्ण बंजी बजाते हुए कटाक्ष भर नेत्रों से गोपियों की तरफ में या सखाओं की तरफ में देख करके मुस्कुरा रहे, इसको देखा इसका है? जो देखा, ये देखने आई उसकी आंखों की सार्थकता है। अब इसके कितने सुंदर सुंदर सब भावपूर्ण अर्थ। मान ले कि हम बद्ध हैं, किंतु इन कथाओं के सुनने से अब उस समय हम लोग लोक में नहीं रहते, एक दूसरे लोक में रहते, उस समय में आनंद होता है, उस समय में ऐसी सुंदर अनुभूति होती है जो संसार का विषय भोग धरा रह जाता है। उस समय खाने की भी इच्छा नहीं रहती, न पीने की भूख याद रहती। इसलिए प्रेमा भक्ति का यदि रागानुगा भजन है तो उसका रागानुगा का साधन भी ऐसा ही आनंद युक्त है, और उसमें जो अनुभूति होती है, अनुभूति क्या होती है, ऐसे अनुभूति ना स्वप्न में भी अनुभूति यदि हो गई देखा तो भी आनंद। और अनुभूति उसको कैसे हुआ, परिक्रमा कर रहा है या हरि कथा सुन करके कहीं जा रहा है, और ऐसे ही झट उसको किसी न किसी रूप में अनुभूति हो जाएगी और अन्य विषयों में विरक्ति हो। अब संसार का कोई भी विषय उसे अच्छा नहीं लगेगा, रुचकर नहीं लगेगा, संसारिक बातें उसको अच्छी नहीं लगेगी, किसी विवाह शादी में भी उसको जाना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। भक्त जने सम माने जुगप उपदय जुगपत उदय भक्ति ज्ञान विरक्ति तीन ज्ञान होने से, ये समझो साधन भक्ति करने से भक्ति ज्ञान और विरक्ति तीनों एक साथ होती है। कुछ लोग वैराग्य के लिए पृथक रूप से प्रयास करते हैं तो वो समझो जो भक्ति का विरोधी मत करो, वो अपने आप भक्ति करने से जो सहज रूप में होगा वही वैराग्य हम लोगों के लिए लाभदायक, उसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। अपने आप भजन करने से उसको भागवत तत्व का ज्ञान भी होगा, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, भगवान की कथाओं लीलाओं को सुनने से भजन करने से अपने आप भगवत तत्व का ज्ञान होता है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, उससे तीनों चीजें एक साथ में होगी। चिद अचिद ईश्वर संबंध ज्ञान 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 किसको कहते हैं, चित क्या है अचित क्या है, समस्त चितों में भी जीवात्मा श्रेष्ठ है, उन जीवात्माओं से भी श्रेष्ठ है भगवान परमात्मा, इसको कहते हैं ज्ञान। और कृष्णेतरे अनाशक्ति विरक्ति प्रमाण, और भगवान का भक्ति से संबंध जिस विषय में नहीं है उसमें उसकी रुचि ही नहीं लगेगी, इसको कहते हैं विरक्ति वैराग्य। ये तीनों चीजों एक साथ में होती हैं, अलग अलग नहीं। नैतन मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्ट असाधु तिब्रम कामातुरम हर्ष शोक भय क्षणार्थम क्षणार्थम तस्मिन कथम तव गतिम विश्रामि दीनः, न एतत् मन तव कथासु विकुंठ, हे विकुंठनाथ हे प्रभो आपकी कथाओं में उन लोगों का मन नहीं लगता है, किन लोगों का, दुरित दुष्ट असाधु तिब्रम, हमारा मन कैसा है, नाना प्रकार के पापों से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब दुरित है और दुष्ट है, और असाधु तिब्रम साधुता का विपरीत हमारा हृदय है, इसलिए मेरा मन आपकी कथाओं में नहीं लग रहा है। यदि हमारा पाप दूर हो जाए, असाधुत्व दूर हो जाए, तो भगवान की कथाओं में रुचि, ये दूर कैसे होगा, ये दूर होगा भगवान की कथाओं के सुनने से, भगवान नाम कीर्तन करने से, साधु संग में भगवत स्मरण इत्यादि से ही हो सकता है। मेरा मन कामातुरम हर्ष शोक भय एषनार्थम, एषना आर्तम, एषना माने काम, तरह तरह की कामनाओं से हमारा मन आर्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, तरह तरह की कामनाएं, और वो कामनाएं पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए मन बहुत आर्त है, कब मिलेगा। और कामातुरम काम में आतुर हैं, काम माने भोग वासना इत्यादि काम, और हर्ष शोक के वशीभूत, थोड़ा सा कोई जगत में कुछ हो जाता है, लॉटरी मिल गई तो खूब आनंद, विवाह हो गया तो आनंद, लड़के का जन्म हो गया तो बहुत आनंद, मन के अनुकूल कुछ हो जाने पर महाआनंद, आनंद नहीं हर्ष, आनंद होने से तो भगवान का सेवा करने से आनंद, भजन करने से, और क्षण में ही सो, इसका चित्त इन कारणों से इन विषयों से भरा पड़ा है, भगवान के नाम में भगवान की कथा में भगवान के स्मरण में उनकी रुचि नहीं है, लोग कहते हैं हमारी रुचि नहीं हो रही, कारण तो दूर करें, कारण दूर करें हम यदि तो ऐसा हो सकता है। तो तस्मिन कथम गतिम विमृशामि दीन, हे प्रभु मैं अत्यंत दीन हूँ, मैं इनको छोड़ना भी चाहता हूँ किंतु मैं छोड़ नहीं पाता, मैं क्या करूँ? यदि आप कृपा करें तो इन चीज़ों को छोड़ सकते, अन्यथा नहीं छोड़ सकते। दूरी तो दूषित मन असाधु मानस, हमारा मन अत्यंत असाधु है। काम हर्ष शोक भय एस नार बस, तब कथा रति किसे हईबे अमार, किसे कृष्ण तब लीला करीब विचार। जब तक ये सब लालसाएं हृदय में हैं तब तक लाख कोई चेष्टा करे इन सब में रुचि नहीं आएगी, और इन लोगों का छोड़ना भी बड़ा आसान नहीं है। यदि नहीं हो रहा है तो अभी निरंतर ऐसा करना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम कीर्तन, रुचि नहीं होने पर भी उनकी कथाओं का सुनना, और सबसे अधिक साधु संघ में ये सब दूर होता है। जिन साधु संघ में ये सब चीजें नहीं है, प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में कहीं कहा गया है, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं एक व्यक्ति को 7 स्त्रियां हैं, 6 स्त्रियां, अथवा एक व्यक्ति को 6 स्त्रियां हैं, अथवा एक स्त्री के 6 पति हैं, वो एक ही बात हुई ना? एक स्त्री के 6 पति हैं, अथवा एक पति के 6 स्त्री हैं, वो जैसे वो अपने अपने वशीभूत पति को करना चाहती हैं, ऐसे ही हमारी 6 पत्नियां हैं, उन पत्नियों से भी भयानक। हे अच्युत, जिह्वा हमारी पहली पत्नी है, जिह्वा, जिह्वा रसना के वशीभूत हो करके तरह तरह की चीजों को आस्वादन करना चाहती, एक तरफ में खींच रही है जिह्वा, और शिष्ण और अधिक खाने से हृदय में काम होगा तो काम अपने तरफ में खींचता है, पेट अपनी तरफ में खींचता है, पेट भर गया है तो भी यदि कोई चीज अच्छी मिल रही है तो और भी खाते 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 एकदम गला तक खा करके फिर उसी को उल्टी करेगा, किंतु खा लेगा पूरा, पेट नहीं भरता, वो अपनी तरफ में खींच रहा है। और चर्म, ये त्वचा जो है अपने तरफ में खींच रहा है, किस लिए? नरम गद्दा चाहिए, नरम कोमल चादर चाहिए, अतच शीत उसमें ठीक से चली जाए, अच्छे अच्छे कोमल और भोग विलास युक्त ये चीजें हो सके, कोमल स्पर्श, सज्जा अच्छी, सज्जा अच्छे, कपड़े अच्छे, सब चीज होना चाहिए, ये चाहता है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो इन्हीं के लिए अपना प्राण दे देते हैं, मनुष्य सबसे अधिक,
हैं
5 6 अच्छा, और जितने 6-5 का नहीं है सभी ये सब है। और श्रवण क्या चाहता है? मीठी मीठी बातों को सुनना चाहता है, हमारे लिए जो उपकारी कड़ी बातें हैं उसको सुनना नहीं चाहता, बड़ी मधुर मधुर बातें जिससे कि हमारा भजन बिगड़ जाए ऐसी बातें सुनना चाहता है। आजकल घर में ऐसी बातों को अपने देश से भी काम नहीं चलता तो विदेशों से भी खबर सुनने के लिए घर के ऊपर में छाता लगाते हैं। छाता जानता है? अच्छा, 25,000 में वो लगता है। उसमें देश विदेश के जितने भी मधुर बातें होंगी उसमें आसानी से सहज रूप में जिन लोगों के पास पैसे हैं ना वो सब लोग आजकल लगा रहे हैं। इसीलिए हम लोग घर में टीवी और क्या क्या लगा रखा है। और घ्राण, घ्राण माने नाक, अच्छी अच्छी सुगंध सूंघने के लिए अपने तरफ में खींच रही है। और चक्षु रूप देखने के लिए अपने तरफ में खींच रही है। कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिय माने चक्षु बाक पानी बाक उपाय, अर्थात बाक माने बोली, बाक पानी हाथ और पैर, पायु और उपास्थ, ये अपने तरफ में खींचते हैं। बहुपत्नी जाता जिस प्रकार से बहुत सी पत्नियां अपने अपने तरफ में खींचती, कहीं भागवत में इसका प्रसंग आया ये बहुत पत्नियां अपने अपने तरफ में खींच रही हैं, आदमी मर गया वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु जब हुए तो सब स्त्रियां देखी ये अपने पति को हम वशीभूत नहीं कर सकते हैं, इसको लड़का हो गया इसीलिए इसने अपने पति को अपने तरफ में खींच लिया। तो सोचा जो हम लोगों को इच्छानुसार में लड़का तो पैदा हम नहीं कर सकती जो राजा का दृष्टि आकर्षण करें, उसके लड़के को मार सकती हैं, बस सीप में दूध मिला करके और उसमें कालकूट जहर मिला करके उसको दे दिया, लड़का मर गया। वो केवल कारण यही था कि राजा थोड़ी सी उपेक्षा करता था और उपेक्षा उससे सहन नहीं हुई। जितने अनर्थ अधिकांश होते हैं ऐसे ही अनर्थ होते हैं। यदि पहले से वो लोग भगवान का भजन करते और जो कुछ मिल गया उसी से संतुष्ट रहते तो हो जाते। आजकल अधिकांश लोग मर रहे हैं आत्महत्या कर, कोई थोड़ा सा भी कष्ट हो गया सहन नहीं करेंगे, सहेंगे नहीं, बीस खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। यहाँ तक कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी, पढ़े लिखे लोग भी, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। अरे तुम घर से निकल करके जहाँ तहाँ कहीं कहीं भजन तक कर सकता था, प्राण देने की क्या जरूरत है? इसलिए कभी भी प्राण देने की कोई चेष्टा मत करे आत्महत्या न करके। यदि वो अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो हम जहाँ से रह करके जैसे तैसे भगवान का भजन कर सकते हैं, जहाँ रहेंगे जरूर मिल जाएगा भोजन, किसी न किसी रूप में भोजन अच्छा आनंद मिल जाएगा। कुत्ते गधों को मिल जाता है तो हमारा भरण पोषण नहीं होगा, ऐसा तो विश्वास रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में प्राण त्याग करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो और विपत्तियां हो जाती हैं। एमत अवस्था मोर श्री नंदनंदन, ऐसी अवस्था में हे नंदनंदन मैं क्या करूं? ये किसी को एक दो होती है, हमको ये सभी चीजें हैं। प्रभु आप कृपा करें जिससे मैं आपका भजन कर सकूं, चित्त चंचल न हो। सबसे बड़ी बात यह है बिना बुलाए दुख आता है, कभी कोई दुख नहीं चाहता दुख आ जाता है, तो सुख भी यदि होगा तो बिना बुलाए क्यों नहीं आएगा? इसलिए बुद्धिमान पुरुष इसके लिए चेष्टा नहीं करते, वो सब समय समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन करते। इसलिए ऐसा सोच करके भगवान का तन मन सब प्रकार से उनका भजन करना चाहिए। जैसी स्थिति आती है उसी के अनुकूल अपने को ढाल कर तो उसी में संतुष्ट रहे। इस प्रकार का व्यक्ति हरिनाम कर सकता है, उसको धीरे 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 अनिश्चितता से निश्चिता भक्ति होगी और अंत में उसको रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह से उसका भजन सार्थक हो जाएगा। आज यहीं तक रहे। बंझा कल
कदूरी भागो भवे अत्र वानत्र तुवा चिरस्याम
जिनाम अहम एकोपि भवज्जनानं भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्।
तदस्तु मेना। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। कब कह रहे हैं? जब भगवान की महिमा का अंत नहीं पाया, वो नहीं समझ सके, कुछ भी विचार नहीं करने में समर्थ नहीं हुए। किसकी माया से ये सब हुआ ने? किसकी माया से ये इतनी ग्वाल बाल और बछड़े और फिर इधर भी उधर भी ये सब हुए, और साथ ही साथ में सब चतुर्भुज हो गए, और थोड़ी देर के बाद में एक कृष्ण रहे बस, एक कृष्ण वही जाती है, एक ही कृष्ण रहे और बाकी सब मूर्तियां गायब हो गई, और कृष्ण माँ के सूखे हुए मुंह, और बच्चों को ढूंढ रहे हैं और गोपालों को ढूंढ रहे हैं, गाय बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, अज्ञ बन गए। उनकी इस स्थिति को देख करके ब्रह्मा जी पुनः पुनः प्रणाम कर रहे हैं और स्तव और स्तुति करने लग गए। वही कह रहे हैं, तदस्तु मे नाथ सभूरी भागो भवे अत्र वानत्र तू वा तिरस्यम। कहते हैं तत अस्तु मीनाथ, हे प्रभो, अत्र माने इस वृंदावन में अथवा अन्यत्र कहीं भी विश्व में हमारा जन्म हो, इससे हमको कुछ भी आपसे प्रार्थना नहीं करें। तो इस वृंदावन में मेरा जन्म हो, चाहे अन्यत्र कहीं भी जन्म हो, चाहे मैं यहाँ पर घास जन्म लू, पशु पक्षी कीट पतंग जन्म लू, मुझको जो दुख और सुख हो वो सब हो, हमको इसके लिए चिंता नहीं है। जेना अहम एको भवत जना भूत्वा, बस आप लोग, आपके भवत जना नाम माने आपके जो भगवत भक्त हैं, आपके जो भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, उनका मैं कुछ हो करके उनका कुत्ता बनूं, उनका कोई पक्षी बन जाऊं, उनकी गाय बनूं, उनका लड़का बनूं, बस उन्हीं के संग में उन्हीं के संबंधी हम कुछ बन जाएं, चाहे कुत्ता भी होना पड़े तो उन्हीं का, और आपके चरण कमलों के भी सेवा कर सकूं, बस यही चाहते, उनकी कही हुई हरि कथा सुन सकूं, आपके धाम में जा सकूं, यही सब हमारी कामना है। बस कहीं भी हमारा जन्म हो, कोई भी आपत्ति नहीं, आपके भक्तों का संबंध में हमारा कोई जन्म हो, ए ब्रह्म जन्मै वा अन्य कोनो भवे, इस ब्रह्म जन्म में माने ब्रह्मा कह रहे हैं, इस ब्रह्म जन्म में अतः तो ब्रह्मा में हूं, अथवा कहीं अन्यत्र पृथ्वी में मेरा जन्म हो जाए, पशु पक्षी है जन्मी तुम्हार भी भवे, पशु पक्षी के रूप में भी हमारा जन्म हो, तो केवल मात्र बस यही प्रार्थना और आशा है कि भक्तों के संग में हमको भी, बस यही, और उन्हीं लोगों के संग में रह करके आपके चरण कमलों की मैं सेवा कर सकूं। कैसे करेगा? उसको सुजोग मिल जाएगा सेवा करने, भक्तों के घर में कुत्ता भी होंगे तो उनका प्रसाद सेवन करने के मिल जाएगा, ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाएगा, अंदर तो पत्ता भी फेंक देंगे तो चाट करके जीवन निर्वाह करने का सुजोग मिल जाएगा। बल्कि पशु पक्षी होकर तो अच्छा है, लठिया भी खा लेंगे किंतु अपराध नहीं कर पाएंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, पुरुष होने में साधन भजन करने में यदि होगा तो कुछ डर भी है, या किसी प्रकार से अवज्ञा कर दिया, निंदा कर दिया, किंतु उनमें डर नहीं। इसलिए पहली अवस्था में तो वैसा ही जन्म हो, और फिर जब कुछ बुद्धि शुद्धि हो जाए, सुकृति अधिक हो जाए, तो वैष्णव का संग हमें मिले, जिससे कि हम लोग उनके जैसे तैसे आदेश को भी हम लोग पालन करें। प्रभुपाद जी ने कहा ना, जब वैष्णव का आदेश या गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए हमको यदि कोटि कोटि नरक में भी जाना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करके हम, कॉन्ट्रैक्ट माने क्या, ले करके चुक्ति पत्र दे करके भी हम ऐसा करें। इसलिए ब्रह्मा जी ने और भी बहुत से तौ किए हैं, इसमें से हम लोगों के अनुकूल रुचि होने के लिए यही चाहिए, वैष्णव का संग। आज यदि किसी को वैष्णव का संग मिल गया तो उसको क्या करना चाहिए, प्राण के समान अपना बंधु मान करके उनके साथ में भगवत भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। नहीं तो ये यदि गया तो हमारा जीवन का सर्वस्व चला गया, फिर ऐसा नहीं मिलेगा। कोन्वयिष्यति पाद सरोज भाजन सुदुर्लभो अर्थेषु चतुष्वपिह तथापि नाहं प्रविणोमि भूमन् भवत् पदाम्बोज निषेव वो उन उत्सुक निषेवेनो उत्सुक। ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को कह रहे हैं, और परीक्षित महाराज जी को पूर्व की कथा में कह रहे हैं, तृतीय में। कोनो ईश ते पाद सरोज भाजन, जिन लोगों की भगवान के चरणों में भक्ति है, उन लोगों को कौन ईश ते पाद सरोज भाजन सुदुर्लभो पदार्थेश, चारों चार प्रकार के अर्थ हैं मनुष्य के, धर्म अर्थ काम और धर्म। एक अर्थ है धर्म माने क्या, वर्णाश्रम, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सच बोलना, ये सब चीजें, ये एक अर्थ है। इस अर्थ से क्या होता है, ये अर्थ मिलता है धर्म अर्थ। अर्थ माने रुपया पैसा, ये घर और सब चीजें जो जितने प्रकार की, ये सब चीजें, इसलिए एक अर्थ ये है। पहले धर्म होगा तब फिर ये मिलेगा, धर्म अर्थ। इसके बाद में जितनी प्रकार की तुम्हारी कामनाएं उस अर्थ के द्वारा पूरा होगा, धर्म अर्थ काम। किंतु फिर इसे होगा क्या, फिर अब जो काम जो हुआ वो काम फिर धर्म कराएगा, फिर धर्म से फिर अर्थ होगा, और अर्थ से फिर काम होगा, फिर काम से, ऐसे ये तीनों घूमते रहेंगे, इसी को कहते हैं त्रिवर्ग। इसे ऐसा ये 99 का फेर है कि कभी कोई निकल नहीं सकता, जिधर से निकलने की चेष्टा करो फिर घूम फिर करके
उलझ जाए,
उसी में उलझ जाए, दलदल है। किंतु कोई सौभाग्यवान जी कुछ लोगों की संग से वो इनसे निकल जाते हैं, किंतु मुक्ति रूपी अर्थ में फंस जाते हैं। धर्म अर्थ काम और अंत में है मोक्ष, ये भी अर्थ है। अर्थ माने ये परमार्थ का आधा कुछ माना जाता है, अर्थ है ये मुक्ति होना, जन्म मरण से ये कम नहीं है और तृताप से, किंतु यही अंतिम सीढ़ी नहीं है। यहाँ से आरंभ होता है यथार्थ परमार्थ, वो भक्ति है पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम है पंचम पुरुषार्थ। तो कहते हैं कि इस संसार में भक्तों के लिए ऐसा कौन पदार्थ है चारों में से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो उनको नहीं मिल सकता है, उनके लिए कोई भी चीज सुदृढ़ चाहे ना तो अर्थ मिल जाएगा, चाहे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। एक लड़का गरीब घर का मठ में आया, मान लिया कुछ दिन रहा, अच्छा कीर्तन करने लगा, भगवान की कथा भी अच्छा तरह से बांचने लगा, कुछ धनी घर के कोई माता पिता और लड़के देखा जैसे हमारी एक लड़की है, यदि इसका इसके साथ में विवाह कर दे, मतलब वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था जे हमारा उस वंश में धनी घर में हमारी शादी होगी, और घर वाले चाहते हैं जैसे इसको लाखों रुपए भी दे करके, और उस लड़के से इसकी बड़ा लड़का जुड़ गया है, भगवान का भजन करता है और शांत चित्त से, बस देखा जे सुंदर सुकांत भी है, बस उसको किसी प्रकार के कर सुन करके उसको विवाह दे करके विराट धनी भी हो गया, शादी जो कि ऐसे सहज रूप में नहीं। तो भक्त यदि चाहे ना तो ये भी हो जाएगा। धर्म धर्म तो कर ही रहा है, काम यदि वो भक्त लोग चाहे ना तो बड़े बड़े धनी लोगों के घर में जो भोग की सामग्री नहीं है, आजकल साधुओं के घर में वो सब सामग्री जाकर के देख लेंगे आसानी से, उनको वहां पर दे सकते। गृहस्थ लोग जिसके लिए कामना करते हैं उनको नहीं पूरा होता है, और उनके यहाँ भोग, उनके यहाँ 50 गायें 100 गायें 10,000 गायें उनके आश्रम में पल रही है, मक्खन और छाना और ये सब इधर उधर फेंका जा रहा है। घर में देखेंगे कि कैसे पलंग कैसे क्या क्या उनके बने हुए, यदि चाहे तो उसको भोग सकता है, तो उसको छोड़ करके ऊपर में चला जाएगा, यदि उसी में लग गया तो वही मिल, तो भक्तों के लिए वो भी सहज है। मुक्ति मुक्ति एक नाम के द्वारा ही, नवाभास से ही मुक्ति उसकी हो जाती है। बड़े बड़े मुक्त लोग, बड़े बड़े चेष्टा करके ज्ञानी लोग और मुक्ति नहीं पाते, और ये चुटकी बजाते हैं एक हरे कृष्ण छींकते समय कर दिया और आभास से ही उसको मुक्ति हो। किंतु कृष्ण प्रेम भाई सहज नहीं है, ये बड़ा मुश्किल वाला है, किंतु साधन करने से ये भी पाया जाएगा भक्त। इसलिए कह रहे हैं कि दूर जगत के लिए ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, किंतु भक्तों के लिए चुटकी बजाते हैं ये सब अनायास ही मिल सकती हैं। तथापि ना हम प्रविणोमि, हे भूमन आप सब कुछ देने में संबंध अल्प में सुख नहीं है, सुख कहाँ है, भूमा पुरुष में, उनकी आराधना में ही सुख है, इसलिए भगवान को कृष्ण को भूमा पुरुष कहा गया ना, विष्णु से ही भूमा पुरुष आरंभ होते हैं और उनके ये फ्रैक्शंस हैं, अंश हैं ये भूमा पुरुष। कर्णाधिशाई विष्णु को भी भूमा पुरुष कहते हैं, गर्भदशाई को कहते हैं विष्णु तत्व, ये सब भूमा पुरुष, और इनके मूल हैं कौन, कृष्ण। तो कृष्ण के जो भजन करने वाले हैं वो कहते हैं प्रभो ये चारों चीज आप अनायासी दे सकते हैं और देते हैं, और हमको भी कह रहे हैं लेने के लिए, किंतु हमको इससे कोई भी जरूरत नहीं। उनको उल्टा उनके तरफ में दे करके ऐसे कहते हैं ये हमको नहीं चाहिए, बहुत घृणा के साथ ना हम प्रवण ओमी भूमन भवत पदाम्बोध निषेवणो उत्सुक, हम तो आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, हम इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी आप लोग रहेंगे बहुत प्रतिष्ठा आएगी, अभी साधन की अत्यंत निम्न श्रेणी में लोग कहेंगे जी अरे बहुत बड़ा साधु हो गया, प्रार्थना करेंगे जो हमको तुम कुछ आशीर्वाद दे जाओ, अरे मैं साधु नहीं, तभी कहेंगे तुम कह दो वो हो जाएगा, बड़ा आदर करेंगे लोग। और धर्म और अर्थ और मोक्ष ये सहज चीज नहीं, ये भी हाथ जोड़ करके तुम लोगों के पास में आएंगे, किंतु खबरदार सीधी तरह से निगाह से इनके तरफ देखना मत, इसी जीवन में सबको पार कर जाओ। तरह तरह के लोभ आते हैं इस जगत में, मोह आते हैं, सारा जीवन एक बूढ़ा आदमी सारा जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, नाती के लिए सब किया, किंतु घर वाले छोड़ेंगे नहीं, अंत तक चाहे 100 वर्ष के भी हो तभी छोड़ेंगे नहीं, अरे तू घर में यहाँ पर बैठा रहेगा तो भी कुत्ते टूते या चूहे टूहे बिल्ली तो नहीं आएगी, तू पहरा देगा तो घर में बैठा रहो, अंत तक नहीं छोड़ेंगे संसार वाले, है? किंतु हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम गुरु वैष्णव और शास्त्रों की बात नहीं सुनते, हम उन्हीं के मुंह में पढ़ करके उसी में लग जाते। अरे सारा जीवन तो कमाया किया दिया सब, अब उसमें से थोड़ा सा समय लेकर के सवेरे शाम भगवान का तो भजन कर, वो लोग नहीं करने देंगे कि तो तुम लोग करो, बुद्धिमान हो तो भजन करो। तस्वैव हेतु प्रयेत कोविदा कोविदो न लभेत जत भ्रमतां उपर यध तल्लभ लभ्यते दुखवत अन्नतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर अंगसार। प्रथम स्कंद में ही कह रहे हैं ये सुख गोस्वामी जी कह रहे हैं। तस्वैव हेतु इसलिए देखो, कोई भी दुख नहीं चाहता किंतु दुख बिना बुलाए आ जाता है। दुख को कोई निमंत्रण नहीं देता तो भी बिना बुलाए अतिथि होकर के वो आ जाता है, और उसको प्रणाम करके दूर भगो तो वो सुनेगा नहीं, सिर पर चढ़ करके जबरदस्ती भोगा लेगा वो। तो यदि सुख भी होगा तो अपने आप आएगा, उसके लिए चेष्टा करके तुम मर क्यों रहा है। जब दुख के लिए कुछ नहीं करता तो भी आता है, तो सुख भी यदि होने को होगा जरूर होगा। नहीं, जहां तुम रहोगे वन जंगल में भी रहोगे जहां भी रहोगे दुख सुख जरूर आएगा। इसलिए तस्वैव हेतु, इस हेतु से प्रजयेत कोविदो, कोविदा मैंने
पंडित
जो कोविद अच्छी तरह से जो जानने वाले हैं समझने वाले हैं अनुभव करने वाले हैं, उनको पहले और बीच का और सब इतिहास इत्यादि को देख सुन करके रामायण महाभारत और सब शास्त्रों को देख करके गीता देख करके भागवत देख करके उपनिषदों को देख करके विचार करना चाहिए। विचार करके अनुभव के साथ में इन चीजों के प्रति अपना मोह तो सब छोड़ना चाहिए। एक श्रीमद् भागवत में उपाख्यान दिया, एक थी बकरी की, बकरा था वो अपनी बकरी को छोड़ करके वो दूसरी बकरी ढूंढने लगा। तो वो बकरी और बकरा जब गया तो एक कुएं में एक बकरी गिरी हुई थी, तो वो मैं भैं कर रही थी, तो ये सुन करके ये वहां पर पहुंच गया बकरा। जब पहुंच गया तो उसने देखा कि उसमें वो रो रही है बिलाप कर रही है, तो उसने उसको सहायता दे करके उठा लिया। तो उसने कहा जैसे यदि हमको उठा लिया तो हम अब आपके साथ नहीं रहे, पहले सूत्र में गुत गई। एक दूसरी थी वो इससे कुपित हो गई, जो पहले वाली इसकी स्त्री वो कुपित हो गई, अब वो दोनों के फेर में पड़ गया। बहुत रोचक कथा उसमें दी गई है। अंत में क्या हुआ, अपने पिता के पास में बकरी थी वो अपने पिता के पास जाग गई और उसने कहा जैसे ये हमको छोड़ करके दूसरी के पास में चला, आप समर्थ हैं आप इसको दंड दीजिए। उसने कहा तुम नामर्द बन जाओ, तो नामर्द बन गया। नामर्द माने क्या है, अब संतति उत्पत्ति करने का शक्ति नहीं है, अब बड़ा दुखी हो गया, अब अपनी स्त्री के पास जाकर के फिर बेमे करने लग गया। फिर वो खुश होकर के अपने पिताजी से कहा अरे आप पिताजी इस पर कृपा कर दीजिए, कहा जैसे तुम अपने लड़कों का उम्र ले लो और तुम अपनी बुढ़ापा दे दो। उसने लिया 10,000 वर्ष तक उसका भोग, एक लड़के ने नहीं दिया तो उसको अप्रसन्न होकर के उसको त्याग दिया। 10,000 करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, बल्कि जैसे आग में घी दिया जाता है और जैसे लपटे उठने लगती हैं ऐसे ही दुख की लपट और सब उसको भोगना पड़ा। श्रीमद् भागवत में छल से कल से बल से उपदेश के माध्यम से ऐसी चीजों को दिया गया है। जो रोज संसार में हो रहा है, और तभी हम लोग देख सुन करके भी नहीं कुछ समझते। इसलिए बुद्धिमान पुरुष क्या करेंगे, इसीलिए संसार में सुख नहीं है। जो लोग संसार में सुख खोजते हैं वो समझें कि मृग मरीचिका में कहीं भी पानी नहीं है। इसलिए इस जगत में जो शांति और सुख खोजते हैं उनके जैसा मूर्ख और कोई नहीं है। उस बकरे के समान है मूर्ख या बकरी के समान। तो भी भागवत इतना गाली देने पर भी हम विचार नहीं करते, उसके मुंह में फंस जाते हैं। इसलिए कोई अर्थात बुद्धिमान पुरुष इसको अनुभव करें और न लभे जब भ्रमताम ऊपर, ऊपर और नीचे घूम रहे हैं 84 लाख प्रकार की योनियों में, कभी दरिद्र कभी धनी कभी अमीर कभी देवता कभी यक्ष कभी मनुष्य कभी गरीब कभी धनी, इसी प्रकार से कभी पशु कभी पक्षी कभी मनुष्य, इस प्रकार से जन्म। सुख की आशा नहीं मिटती, छाया की तरफ में सुख भागता जाता है, अब मिला अंत तक नहीं मिलता। अब हम ही लोग विचार करें जिस जन्म में हम लोग को क्या सुख मिला। अब तो बूढ़े हो गए, अब मरने का दिन आया, अब उसमें क्या सुख मिलने वाला है, क्या चीज इसमें जो हमने कमाई की वो अपने साथ लेकर के जाएंगे। जब विचार करते हैं इसी के लिए, जो विचार करते हैं उनको कोविद कहा गया, जो कि जानने वाले हैं अनुभव के साथ। इसलिए न लभ्यते ऊपर और नीचे जाने का, ये जो है 84 लाख प्रकार के जीवनियों में भ्रमण करके त्रिताप के द्वारा दग्ध होता है, उसको छोड़ करके कालेन सर्वत्र गभीर अंभसा, अर्थात 14 लोकों में जो सुदुर्लभ धन है वो है भक्ति, बस इसी के लिए प्रयत्न करें और किसी चीज के लिए प्रयत्न ना करें। भगवान का भजन करें, भगवान के भजन करने में कोई भी कष्ट नहीं है, सहज ही रूप में भगवान का नाम ले सकते हैं। अपना घर का काम है करो, किंतु भगवान का भजन मत छोड़ो, फिर ऐसा सुजोग जीवन में कभी भी नहीं आएगा। बिना जतने दुखेर घटना जिनो है, ऐसे जो बतलाया, बिना किसी प्रचेष्टा के हम लोगों को दुख आ जाता है। सुख भी अपने प्रारब्ध के कर्म से जरूर आएगा, सुख जहां भी रहो। एक लाला बाबू थे, आज से करीब 200 वर्ष पहले, बंगाल के थे। एक दिन कहीं वो जा रहे थे, वो एक नदी के किनारे पहुंचे, उनको नदी को पार करना है। अब अंतिम खेवा था, अब इसके बाद में खेवा बंद होने वाला था। अब वो कहता है कि शाम हो गई, माने अब खेवा नहीं जाएगा, ये अंतिम खेवा है, जिसको जाना है वो आकर के बस पार करके चले जाओ, नहीं तो खेवा बंद हो जाएगा। शाम हो गई, इन्होंने कहा कि सचमुच में शाम हो गई, हमारे आयु की शाम हो गई, हमारे जीवन की शाम हो गई। ये तो कह रहा है साधारण रूप में, किंतु हमारा जीवन अब ढल चुका है, अब आयु अब थोड़ी सी है, बस वहां से घर बार छोड़ करके वृंदावन, घर में कुछ भी नहीं लिया, एक पैसा भी कुछ नहीं लिया, किंतु वो जो संग्रह की जो प्रवृत्ति है और बुद्धि और कौशल है वो कहां जाए। वृंदावन में आए तो कुछ दिन में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कर दी, और वृंदावन का आधा और मथुरा का भी बहुत भार, जमींदारी उन्होंने बढ़ा दी। अभी लाला बाबू की बड़ी संपत्ति ये सब थी, अब कुछ दिनों में ये सब धीरे 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 बेच रहे हैं। तो वो छोड़ करके आए, तो फिर उनको संपत्ति और धन और ये सब कहां छोड़ा, तो उन्होंने कुछ कुछ भगवान के भजन में लगा लिए, किंतु रूप सनातन ने वो भी नहीं किया। ये परम बुद्धिमान, ये कोविद है। लाला बाबू तो कुछ फंस गए, किंतु ये लोग नहीं फंसे। इसलिए कहते हैं से भक्ति जन्न जत्न करे बुधगण। इसलिए पंडित बुद्धिमान जो है, पढ़ने लिखना चाहिए, पंडित और बुद्धिमान नहीं होता, अनुभव से आदमी होता है, अपने बुद्धि की स्थिरता से। इसलिए सोच विचार कर, इस विषय में हम स्वतंत्र हैं। कर्म का फल भोगने के लिए प्रतंत्र होने पर भी स्वतंत्र ये सब कर्मों के लिए हम लोग स्वतंत्र हम कर सकते हैं। यान प्रति तन्वितांत उपाद पद्म ध्यानात् भवत् जन कथा श्रवणी नवास्यात् सा ब्रह्मणी स्वं महिमन महिमनपि नाथमाभूत् किं अंतकाल से लुलिना पतिता विमाना। ये ध्रुव जी का चरित्र का है, ध्रुव जी के संबंध में प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जिसमें भगवान उनको दर्शन दिया और देशभ्र के कहा तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी के समस्त भोगों को तुम भोग करो। ये कह करके जब अंतर ध्यान हो गए तो अब उनको बड़ा सुख, अरे है मैंने क्या किया, ये सब कुछ देने वाले प्रभु से मैंने ये संसार की ये बेकार की चीजें हमने मांगी, अब तो हाय हाय करके रोने लगे। उस समय मैं ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु तो पद ध्याने भक्त मुखे तव कथा श्रवणे जे सुख तहा मांगे सर्वता ब्रह्म सुख नाही भालो लागे मोर मोने की छार अनित्य लोक सुख संघटे। आपने जो हमें 36,000 वर्ष के लिए ये अचल भोग हमको दिया, समस्त पृथ्वी का एक छत्र राज्य दे दिया, किंतु हमको ये तनिक भी अच्छा नहीं लगता, हमारे मन में तनिक भी सुख और शांति नहीं दे रहे, बल्कि और दुख उत्पन्न कर, जो 36,000 वर्ष हमारा बिता जाएगा इनके भोगने में, बिना भोगे तो नहीं जा सकते, यदि छोड़ देंगे वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बढ़ दिया है, भगवान ने ही बढ़ दिया है, उस वर को तो मिथ्या तो हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि आपके चरणों के ध्यान में ज्ञान निवृत्ति जो सुख आनंद मन शरीर को